राधमाधव कुंज बिहारी जय राधमाधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लव गिरिवर धारी जय गोपी जय गोपी जन बल्लव गिरिवर धारी जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी जय राधमाधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की समवेत भक्त वृंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको सुबह का आज के प्रातःकालीन भागवत कथा में स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं भागवत पुराण के चौथे स्कंद से 22वां अध्याय चर्चा करने वाले हैं। श्लोक क्रमांक है 6 और 7। श्लोक पढ़ेंगे। हाटकासन आसीनान शोधिष्णेषु इव पावकान् श्रद्धा शम्यम संयुक्ता प्रीत प्राह भवाग्रजान्। हाटकासन आसीनान् शोधिष्णेषु इव पावकान् श्रद्धा संयम्य संयुक्तः प्रीत प्राह भवाग्रजान्। हाटकासन आसीनान् शोधिष्णेषु इव पावका श्रद्धा संयम्य संयुक्तः प्रीत प्राह भवाग्रजान्। स्वदिष्णेषु इव पावकान् श्रद्धा संयम्य संयुक्ता प्रीत प्राह भवाग्रजान्। हाटकासिन आसीना स्वदिष्णेषु इव पावका श्रद्धा संयम्य संयुक्ता प्रीत प्राह भवाग्रजान्। माताजी इसको ही पढ़ने चाहेंगे। ओके okay. शब्द अनुवाद हाटका आसीन सोने के बने सिंहासन पर आसीनान बैठे हुए स्वदिशनेशु बलिवेदी पर इव मानो पावकान अग्नि श्रद्धा सम्मान संयम संयम संयुक्त से विभूषित प्रीतः प्रसन्न प्राह कहा भव शिव अग्रजान से बड़े। अनुवाद अभयचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद और तात्पर्य। चारों मुनि शिव से भी ज्येष्ठ थे और जब वे सोने के बने सिंहासन पर बैठा दिया गए तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वेदी पर अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। महाराज पृथु ने उनसे अत्यंत शिष्टता तथा सम्मान पूर्वक बड़े ही संयमित स्वर से कहना प्रारंभ किए। तो ये जो चल रहा है भागवत पुराण में, आप लोग को पता रहेगा पृथु महाराज, तो पृथु महाराज को दर्शन देने के लिए चतुष्कुमार आए हैं और चतुष्कुमार का आगमन हुआ है पृथु महाराज के घर में और फिर पृथु महाराज उनको देखते हुए ये आज का श्लोक चल रहा है। तो तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद जो टिप्पणी लिखते हैं श्लोक के ऊपर। कुमारों को यहां शिव का अग्रज बताया गया है। तो जैसे आपको पता रहेगा चतुष्कुमार वो किनके पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी के पहला पुत्र कौन है, नारद जी। नारद जन्म होते हैं, फिर नारद जन्म होने के बाद नारद जी तो ब्रह्मचारी व्रत में चले जाते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी को सेवा दिया गया था, क्या प्रजा सृष्टि करना, लोगों का सृष्टि करना, पहला इंजीनियर है तो क्रिएशन करना है उनको। तो पहले तो नारद मुनि बोलते कि हम शादी नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचारी रहेंगे। तो फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं ठीक है, फिर दूसरे संतान उत्पन्न करते हैं और दूसरे संतान कौन जन्म लेते हैं, चतुष्कुमार। और ये भी बोलते हम भी ब्रह्मचारी रहेंगे। तो फिर तरफ ब्रह्मा जी को गुस्सा आता है, अरे सब लोग ब्रह्मचारी बनेंगे तो गृहस्थ कौन बनेगा, संसार आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये बोल रहे हैं कि कुमारों का यहाँ शिव का अग्रज है, इसलिए इनके बाद ब्रह्मा जी जो संतान जन्म करते हैं वो शिव जी का संतान, शिव जी जन्म होते हैं, शिव जी कुमारों के बाद जन्म होते हैं। इसलिए ये चतुष्कुमार शिव जी के बड़े भाई हैं, दिखने में छोटे हैं लेकिन बड़े हैं बहुत, शिव जी के भी ज्येष्ठ हैं। तो यहां पर प्रभुपाद वो बोल रहे हैं कुमारों को यहां शिव का अग्रज बताया गया है। जब ब्रह्मा के शरीर से कुमारों की उत्पत्ति हुई तो इनसे विवाह करने और जनसंख्या बढ़ाने हेतु कहा गया। चूंकि सृष्टि के प्रारंभ में जनसंख्या बढ़ाना अति आवश्यकता था, अतः ब्रह्मा एक एक करके पुत्रों का जन्म देते जा रहे थे और उन्हें जनसंख्या वृद्धि करने का आदेश देते जाते थे। किंतु जब कुमारों से ऐसा कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। वे आजीवन ब्रह्मचारी ही रहकर श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में पूर्णतः तत्पर रहना चाह रहे थे। इन कुमारों को नैष्टिक ब्रह्मचारी कहा जाता है, जिसका अर्थ यह है कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे। विवाह से इनकार करने के कारण ब्रह्मा अत्यंत क्रुद्ध होए और उनकी आंखें लाल हो गई। तभी सोचिए ब्रह्मा जी को इतना बड़ा सेवा दिया गया है सृष्टि को आगे बढ़ाने का और यहाँ पर चतुष्कुमार उनको मना कर रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, तो किसी को भी गुस्सा आएगा। और खास करके कोई अगर पिता रहेंगे और बेटा बोलेगा मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ तो पिता को तो गुस्सा आएगा कि अरे तुम्हें इतना बड़ा बनाया पढ़ा लिखा कर अभी तुम सब छोड़ के ब्रह्मचारी बनोगे। खास करके इस्कॉन में कभी कभी होता है, हम लोग जैसे ब्रह्मचारी हैं तो जैसे ही ब्रह्मचारी होने का खबर घर में जाता है तो पिताजी तुरंत गुस्से हो जाते हैं और बोलते कि तुम्हें इसीलिए इंजीनियर बनाया डॉक्टर बनाया सब छोड़ के तुम ब्रह्मचारी बनोगे। तो हमको समझना चाहिए कि जब ब्रह्मचारी यहाँ पर देखिए क्यों ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको आजीवन भक्ति करके उसको प्रचार करना है और इस प्रचार कार्य में समय बहुत लगता है। अब घर गृहस्थी में रहेंगे तो पता चलेगा समय का कितना कीमती रहता है, कितना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, कितना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, फैमिली देखो, बच्चे को देखो, ये देखो, तो टाइम नहीं मिलता है प्रचार करने के लिए। लेकिन ब्रह्मचारी जीवन में आपको थोड़ा टाइम मिलता है, आप घूम सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज चारों तरफ प्रचार कार्य में लिप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुमारों को था कि हम इसको, इसीलिए कुमार देखिए अब आके पृथु महाराज को दर्शन दे रहे हैं और उनको अभी भागवत कथा बताएंगे, तो उनके पास समय है, इसलिए भ्रमण करके चारों तरफ प्रचार कार्य कर पा रहे हैं। जैसे नारद मुनि देखिए, जहां पर भी नारद मुनि पहुंच जाते हैं, क्यों? क्योंकि ब्रह्मचारी समय नहीं, समय ही समय है, तो इसलिए प्रचार करते, भ्रमण करते रहते हैं सारा विश्व में। तो इसलिए कुमारों का इच्छा था कि हमें प्रचार करना है, इसलिए हमको शादी नहीं करना है। लेकिन ब्रह्मा जी को आदेश मिला है कि जनसंख्या बढ़ाना है, तो गुस्सा हो गए, तो फिर शादी नहीं करेंगे तो आगे कैसे जनसंख्या बढ़ेगा। तो ये स्वाभाविक है कोई भी पिता माता को गुस्सा होना, क्योंकि उनको भी अधिकार बनता है कि जिस संतान को जन्म दिए वो एक क्या बोलते हैं एफेक्शन बॉन्ड रहता है, तो बहुत कष्ट लगता है। लेकिन बाद में जब वो गुस्सा हो जाते हैं तो उस गुस्से से एक और एक संतान उनको जन्म होते हैं। तो भागवत में प्रभुपाद बोलते हैं आगे, तब उनके नेत्रों से उनके नेत्रों के मध्य से शिव या रुद्र का प्रकट हुए, फलस्वरूप क्रोध गुण को क्रोध रुद्र कहा जाता है। शिव का भी अपना संप्रदाय है जो रुद्र संप्रदाय कहलाते हैं, ये लोग भी वैष्णव कहलाते हैं। तो जब उनको क्रोध आता है, ब्रह्मा जी को, उनके क्रोध से शिव जी का उत्पन्न होता है। इसलिए शिव जी कौन सा सेवा करते हैं? प्रलय का सेवा करते हैं। और शिव जी क्रोध जब हो जाते हैं तो तांडव नृत्य करते हैं, क्योंकि उनके उत्पन्न ही क्रोध से हुआ है। तो ब्रह्मा जी के जो बीच से यहां शिव जी का उत्पन्न होता है और उनका प्रकट होते हैं। और शिव जी जैसे ही प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं आप सृष्टि निर्माण करो, लेकिन अभी शिव जी का प्रकट कैसे हुआ? क्रोध से हुआ है। देखिए ये रहता है गर्भधारण संस्कार, जब संतान को उत्पन्न करते हैं माता पिता का जो सोच रहता है वो संतान के भीतर आता है। इसलिए बोला जाता है जब छोटा बच्चा कोख में रहता है तो हम बोलते हैं माता को रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, कृष्ण लीला पढ़ो, क्यों? जब ये सब पढ़ते हैं तो संस्कार बच्चे में जाता है। और उस समय अगर आप बॉलीवुड मूवी देखेंगे, हॉलीवुड देखेंगे, तो वो संस्कार जाएगा बच्चा का, बच्चे के गर्भ में, और फिर बच्चा जन्म होते ही वैसा उत्पन्न काम करेगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं गर्भधान संस्कार। जैसे संस्कार माँ को मिलता है वो संस्कार अपने आप बच्चे को चले जाता है। देखो बच्चे अगर जब बड़े हो जाते हैं तो आपका बात नहीं सुनेंगे, बहुत मुश्किल है उनको कुछ बताना, कुछ सुनाना। लेकिन गर्भधान संस्कार एक ऐसा चीज़ है, उसमें बच्चा का कुछ नहीं चलता है। बच्चा जब पेट में रहता है 9 महीना, जो माँ जो सुनेगी, जो खाएगी, वो संस्कार अपने आप बच्चे को लेना ही पड़ता है। तो इसलिए इसका पूरा फायदा हमको उठाना चाहिए गर्भधान संसार का। ये 9 महीने में माता पिता को अच्छे से भगवान का भक्ति करना चाहिए, गीता रामायण पढ़ना चाहिए, तो अपने आप बच्चे को संस्कार मिल जाता है। तो यहाँ पर शिव जी का जन्म होता है ब्रह्मा जी का क्रोधित होकर। इसलिए शिव जी को जब बोलते हैं कि आप संतान उत्पन्न करो, तो जो कैसे संतान जन्म होते हैं? भूत पिशाच सब ऐसे संतान जन्म होते हैं, क्योंकि अभी वैसे उनका उत्पन्न हुआ है। तो जैसे ही जन्म होते हैं संसार में वो हाहाकार मचाना शुरू कर देते। तो ब्रह्मा बोला अरे ये क्या कर रहे हैं ये? तो बोले कि आप रुको 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 रुको, आप उत्पन्न मत करो संतान, आप अपना बंद करो, आप जाके हिमालय में तपस्या करो, क्योंकि आप उत्पन्न करेंगे तो सृष्टि अभी प्रलय हो जाएगा, अभी सृष्टि शुरू करना है मुझे, लेकिन आपके संतान सब तो भूत पिशाच जन्म हो रहे हैं और सृष्टि को अभी ही प्रलय कर देंगे। तो फिर शिव जी जाके तपस्या में लीन हो जाते हैं और फिर उनका उधर ही प्रजनन बंद हो जाता है। फिर आगे फिर और संतान जन्म करते हैं, प्रजापति जन्म करते हैं, जो कि आगे संतान उत्पन्न करते हैं। तो ये छठा श्लोक था। फिर आज सातवां श्लोक भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये 2 श्लोक हमको दिया गया है पढ़ने के लिए। 7वां श्लोक पढ़ेंगे फिर उसका भावार्थ पढ़ेंगे। पृथुर उवाच मंगलम मंगलया मंगल मंगलायानः यस्य वो दर्शनम हि आसीद दूरदर्शनाम च योगी भी। तो ये 7वां श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है, उसका अनुवाद और भावार्थ। राजा पृथु ने कहा, हे साक्षात कल्याण मूर्ति महामुनियों, आपका दर्शन तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। निस्संदेह आपका दर्शन दुर्लभ है। मैं नहीं जानता कि मुझसे ऐसा कौन सा पुण्य बन पड़ा है जिससे आप मेरे समक्ष इतनी सहजता से प्रकट हुए हैं। तो ये जब चार कुमार को देखते हैं पृथु महाराज, तो ये उनको देख के ये उनको प्रतिवाद में उनको बोलते हैं कि देखिए इतने बड़े हैं पृथु महाराज, लेकिन उनका नम्रता कितना है। देखिए चार कुमार को बोलते हैं कि मेरे से ऐसा क्या पुण्य हो गया कि मैं आपका दर्शन कर पा रहा हूं। भावार्थ में पढ़ेंगे, जब किसी के विकासशील आध्यात्मिक जीवन में कुछ असाधारण घटना घटती है तो यह समझना चाहिए कि किसी अज्ञात स्वीकृति अर्थात किसी अज्ञात पूर्ण कर्म से पुण्य कर्म से ऐसा हुआ है। श्री भगवान या उनके शब्द भक्त का दर्शन प्राप्त कर पाना कोई साधारण घटना नहीं है। जब ऐसी घटनाएं घटें तो इन्हें पूर्व पुण्य कर्मों का परिणाम समझना चाहिए। जैसे कि भगवद गीता में 7वां अध्याय के 28वें श्लोक में बोला गया, ऐसे तो अंतगत पाप जनानाम पुण्य कर्मणाम। देखिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता रहे हैं प्रभुपाद कि भगवान का भक्ति भक्तों का संग कब मिलता है। तो इतना आसान नहीं है भगवान और भक्तों का भक्ति करना। बोला जाता है कि लाखों लाखों लोग इस संसार में हैं, कितने लोग मंदिर आके भगवान का भक्ति करते हैं? अभी कितने सारे लोग हैं और कितने लोग मंदिर में बैठे हैं, कितने लोग कथा सुन रहे हैं? तो ये बहुत ही मतलब भाग्य में, और जब उनका भक्ति अज्ञान स्वीकृति मिलता है तभी जाके व्यक्ति भगवान का कथा श्रवण भक्ति कर पाता है। तो एक श्लोक आता है भगवद गीता के 7वां अध्याय के 28वें श्लोक में, जो कि यहाँ पर प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, येषां तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते माम दृढ़ व्रता। कब भजन का भगवान का भजन आप दृढ़ व्रता से कर सकते हैं? भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, येषां तु अंतगता पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। जब व्यक्ति पुण्य कर्म करता है, जब पुण्य कर्म मतलब क्या है यहां पर, इसका अर्थ क्या है, जब आप किसी एक साधु के संगति में आ जाते हैं, किसी एक साधु के संगति में आ जाते हैं और साधु आपको क्या बोलेगा, बोलेगा बॉलीवुड मूवी देखो, क्या बोलेगा साधु आपको, भजन कीर्तन करने का, गीता भागवत का कथा करेगा, कैसे भगवान का हरिनाम जप करने का आपको सिखाएगा, साधु वही करेगा। तो जब जीवात्मा जो 84 लाख योनि में भटक रहा था, भटकते भटकते कैसे कैसे अज्ञान स्वीकृति में एक साधु का संग मिल जाता है और साधु का मुख से भगवान हरि कीर्तन करने का वो सुनता है और क्या फिर क्या करता है, भजन करना शुरू करता है। जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे, और जब ये भजन करता है तो क्या होता है, येषां तु अंतगतम पापम, आपके हृदय में जन्म जन्मांतर से बहुत सारा पाप भरा हुआ है, पता नहीं है हमको इतना पाप भरा हुआ है। बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी 3रा स्कंद में बोलते हैं कि एक विराट एक बड़ा पर्वत जितना बड़ा है ना उतना पाप है आपके हृदय में। बोला अरे बाप रे इतना पाप है, क्योंकि ये एक जन्म नहीं है, लाखों लाखों जन्म में हमने क्या क्या किया है हमको याद नहीं है, और हर जन्म में कुछ ना कुछ पाप किए रहेंगे ना, तो ऐसा एक पर्वत के भांति पाप आपके हृदय में भरा है और इसको नष्ट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब भगवान का भक्ति करते हैं तो इतना बड़ा पाप रूपी शिखर एक पल में नष्ट होकर मिट जाता है। जैसे एक अगर बिजली किसी पर्वत के ऊपर गिरती है तो कैसा एक पर्वत चूर चूर होकर नष्ट हो जाता है, उसी तरह हरिनाम का बिजली इस पाप रूपी पर्वत के ऊपर जब आपके हृदय में गिरती है तो जन्म जन्मांतर का भी पाप नष्ट होके वो चूर्णित हो जाता है। ये हरिनाम का शक्ति है। तो ये शाम तो अंतर्गत जितना भी पाप आप करेगा सब नष्ट हो जाएगा जब आप भजन कार्य शुरू करते हैं। फिर क्या होता है, ते द्वंद्व मुक्त निर्मुक्त, सभी प्रकार के द्वंद्व से आप मुक्त हो जाते हैं। क्या सही है क्या गलत है हमको पता नहीं है, लेकिन जब आप पाप आपका सब जो जन्म जन्मांतर का पाप जब नष्ट हो जाता है तब आपको पता चलता है क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। बहुत सारे लोग हैं उनको पता नहीं कि हम जब बात करते हैं अरे मांस खाने में क्या प्रॉब्लम है, बोलते हैं ये भी तो खाना है ना, हम नहीं खाएंगे तो इतना सारे चिकन्स बढ़ जाएंगे, पॉपुलेशन वृद्धि हो जाएगा, तो मैं खा के नियंत्रण करता हूँ पॉपुलेशन, ऐसा एक व्यक्ति मुझे बोला। तो उनको पता भी नहीं कि गला काट के मैं 2 इंच का जीवा का टेस्ट के लिए एक व्यक्ति का मैं गला काट के खा रहा हूं वो अच्छा है कि बुरा है उसको पता नहीं। ऐसा आजकल के लोग ऐसे हैं। मैं बोला कि तुम एक थोड़ा भी अकल होगा तो अब जब इसको मारते हो कितना चीख चीख के मरती है, कितना कष्ट होता है। मैं आपका गला थोड़ा काटता हूँ कैसे लगता है, थोड़ा आप देखिए टेस्ट कीजिए। बोला अरे अरे ऐसा कैसे करेंगे, तो ऐसा ही तो आप कर रहे हैं ना। आपका 2 इंच का जीवा का टेस्ट के लिए आप एक जानवर का गला काट रहे हैं, उसका जीवन ले रहे हैं। एक बार इधर से नीचे चला जाता तो पता नहीं चलता क्या खाया है, सब एक साथ निकल जाता है। लेकिन इतना टेस्ट के लिए आप एक व्यक्ति का गला काट रहे हैं, एक मुर्गी का, एक जानवर का, एक बकरी का, एक गाय का, कितना कष्ट होता है उनको, तो उसका तो मिलेगा प्रतिक्रिया। तो इस प्रकार द्वंद्व में व्यक्ति रहता है, उसको क्या सही है क्या गलत पता नहीं चलता है। लेकिन जब भजन करते हैं तब भगवान विवेक देते हैं, बुद्धि देते हैं कि ये मूर्ख, ये सही है, ये गलत है, ये मत कर, और हमको सही करने का शक्ति मिलता है। तो ये भजन करते हैं तो शक्ति मिलता है और सही रास्ते में हम आगे चल पाते। और तब क्या होता है, भजन्ते माम दृढ़ व्रता, भजन आपका दृढ़ हो जाता है। भगवान बोल रहे हैं जब साधु के साथ संग में आते हैं, भजन क्रिया करते हैं, भजन आपका दृढ़ हो जाता है, ये हो गया आपका निष्ठा। अनर्थ निवृत्ति जैसे श्रद्धा, साधु संग के बाद भजन क्रिया, भजन क्रिया जब होता है अनर्थ निवृत्ति होता है, पाप का निवृत्ति होता है। अर्थ मतलब क्या, पैसा, सब अपना बैंक बैलेंस में पैसा रखते हैं ना बैंक में, किसका SBI में, किसका SBM में, अलग अलग बैंक में पैसा रखते हैं और हम देखते हैं पैसा बराबर है कि नहीं, वो अर्थ है, जिसको जो सब लोग चाहते हैं उसको। अनर्थ मतलब जो नहीं चाहते हैं आप, जिसका कोई मूल्य नहीं है। क्या है अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ, मद, माश्चर्य, ये सब जो है किसी को नहीं चाहिए, ये सब हम व्यक्ति को नर्क की तरफ लेके जाता है। तो अनर्थ निवृत्ति होता है जब भजन क्रिया करते हैं, अनर्थ धीरे 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 निकलते रहता है। और जब अनर्थ सब निकल जाता है तो क्या होता है, निष्ठा। निष्ठा मतलब आप भक्ति में आपका दृढ़ता आ जाता है, मतलब आपको हर रोज 16 माला जप करना है तो 16 माला जप करेंगे, प्रसाद सेवन करना है तो प्रसाद सेवन ही करेंगे, उसके बिना कुछ नहीं करेंगे। तो कोई आपको भक्ति के रास्ते से आपको इधर उधर नहीं ले सकता, आप दृढ़ पूर्वक भक्ति करेंगे, उसको बोलते हैं निष्ठा। तो इस प्रकार भगवान बोलते हैं कि दृढ़ पूर्वक भक्ति करते हैं, ये श्लोक यहां पर प्रभुपाद कोट करते हैं। फिर आगे बोलते हैं प्रभुपाद, यद्यपि महाराज पृथु का जीवन पुण्य कर्मों से अतोप्रोत था, तो भी उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि उन्हें कुमारों के दर्शन किस प्रकार हो सके। उन्हें इनका अनुमान ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने किस प्रकार के पुण्य कर्म किए होंगे। यह राजा पृथु की विनयशीलता था, विनयशीलता मतलब ह्यूमिलिटी का प्रतीक है, जिनका जीवन पुण्य कर्मों से इतना परिपूर्ण था कि उनको भगवान श्री विष्णु तक ने दर्शन दिए थे और भविष्यवाणी की थी कि कुमार भी उन्हें दर्शन देंगे। अभी देखिए पृथु महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। अरे कौन थे पृथु महाराज, जिनको साक्षात भगवान विष्णु ने दर्शन दिया था, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। पृथु महाराज जब यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ और 99 यज्ञ जब कर चुके थे और 100वां यज्ञ करने वाले थे, कौन विचलित हो जाता है, इंद्र, क्योंकि जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वो इंद्र बन सकता है। तो इंद्र अपना कुर्सी संभालने के लिए टेंशन हो गया, अभी कुर्सी जाने वाला है, पॉलिटिक्स में होता है ना, कुर्सी जाने वाला है तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, अभी रिसेंटली हुआ है महाराष्ट्र में, सब चल गए, हो गया सब, तो कुर्सी जा रहा है इंद्र का अभी, तो इंद्र टेंशन में आ गया, अभी क्या करना पड़ेगा, ये अभी 100 अश्वमेध यज्ञ कर देगा तो मेरा कुर्सी जाएगा, इंद्र बन जाएगा अभी, ये अभी प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा अभी ये। तो इंद्र क्या करता है, एक सन्यासी का वेश में आता है और घोड़े को, जो अश्वमेध यज्ञ में जिस घोड़े को बलिदान देते उस घोड़े को चोरी करके चला जाता है। तो इधर जो हमारे पृथु महाराज के जो संतान थे विजित, वो जाते हैं घोड़े को लाने के लिए और देखते हैं कि एक सन्यासी है। बोला अरे सन्यासी को कैसे मार सकते हैं सन्यासी के वेश में, क्योंकि इंद्र बहुत चालाक था, इंद्र एक सन्यासी के वेश में आके घोड़े को चोरी करके लेके जा रहा था, तो फिर वो नहीं मारता है। लेकिन सब जो संत मुनि थे उनको पता चल जाता है, अरे इंद्र है ये, सन्यासी नहीं, ढोंगी है, इसको मारो। और तभी वो अपने वाण को मारने ही वाला था, इंद्र घोड़ा छोड़ के चला जाता है। ऐसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं 3 बार, बहुत बार करता है। तो अंततः पृथु महाराज खुद गुस्से हो जाते हैं, बोले कि ये इंद्र ऐसा क्यों कर रहा है, तो खुद यज्ञ से उठ जाते हैं, बोले मैं ही उसको अभी अंत कर देता हूँ। और पृथु महाराज जी मारने के लिए जा रहे थे, और तब ब्राह्मण बोलते हैं कि अरे आप नहीं मार सकते क्योंकि आप यजमान हैं, आप बैठे हैं यज्ञ में, आप मारेंगे तो यज्ञ संपन्न नहीं होगा, फिर आप चिंता मत करो, हम लोग इसको मंत्र से ही मार देंगे। कि देखिए ब्राह्मण लोग का कितना पावर रहता था, उनको वाण चलाने का जरूरत नहीं, बोला मंत्र उच्चारण करने के करके इस इंद्र को इस यज्ञ कुंड में हवन में डाल देंगे। और मंत्र उच्चारण कर ही रहे थे और वहां पर कौन आते हैं, वहां पर ब्रह्मा जी आके बोलते कि अरे ऐसा कैसे कर सकते हो आप, ये इंद्र जो है बड़ा बहुत बड़ा पदवी है, प्राइम मिनिस्टर है देश को, उसको कैसे मार सकते हो आप, अरे आप यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ का यज्ञ पुरुष, इसके द्वारा यज्ञ मंत्र जाता है, इनको ही तो पूजा कर रहे हैं यज्ञ में, इंद्र को, देवताओं के राजा हैं, आप उनको कैसे मार सकते हो। तो बोले कि ऐसा कार्य कर रहे हैं, बोले ठीक है अभी क्या करेंगे, वो ऐसा है आप 99 में अपने यज्ञ को संपन्न कर दीजिए, आप सो मत कीजिए, अभी देखिए गलती किसका है, इंद्र का है ना। लेकिन ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं कि पृथु महाराज आप 99 में संतुष्ट हो जाइए, आप सो मत कीजिए। तो कोई भी बोलेगा अरे गलती उसका है और मुझे बोल रहे रखने के लिए। तो देखिए कभी घर में कैसा होता है, अगर दो भाई हैं, एक छोटा भाई है और एक बड़ा भाई है, और दोनों में कभी कभी झगड़ा होता है, तो किसको आप बोलते हैं कि उसको खिलौना दे दे, बड़े को बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं बड़े को, क्योंकि छोटा समझ नहीं सकता, बड़ा का मैच्योरिटी ज्यादा है, बड़ा समझ सकता है, अब बोलता अरे ठीक है उसको दे देना अभी वो छोटा है, बड़ा थोड़ा रूठ जाता है लेकिन दे देता है क्योंकि बड़ा है वो। तो उसी तरह यहाँ पर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि अरे तुम तो बड़ा है पृथु महाराज, तुम बड़ा वैष्णव हो, और इंद्र तो मिश्र भक्त है, उसको तो भोग करना कामना है, बहुत सारा इच्छा है उसका, वो मिश्र भक्त है, लेकिन तुम तो शुद्ध भक्त हो, तुम तो वैष्णव हो, तुम्हें पता है कि वो सुधरने वाला नहीं है, ठीक है ना, तुम 99 में संतुष्ट हो जाओ। तुम्हें करना क्या है, भगवान को संतुष्ट करना है ना, तुम 99 में अगर अपना यज्ञ को रख दे हुए तो भगवान ऑटोमेटिक विष्णु संतुष्ट हो जाएंगे। तो पृथु महाराज बोले ठीक है जैसे आप बोलते हैं। तो पृथु महाराज ने 99 में अपने यज्ञ को समापन कर दिया, और देखिए जैसे ही पृथु महाराज अपने यज्ञ को वहां रोक देते हैं, अभी 100 अश्वमेध यज्ञ होता था भगवान विष्णु का दर्शन होता, लेकिन 99 में जैसे ही पृथु महाराज वहां पर अपना यज्ञ को रोकते हैं, वहां पर विष्णु प्रकट हो जाते हैं, तुरंत भगवान विष्णु वैकुंठ से वहां पर प्रकट हो जाते हैं, और इतने आनंद में विष्णु रहते हैं, बोलते कि भगवान विष्णु कभी आते हैं ना तो जमीन में नहीं खड़े होते हैं और आसमान में खड़े होते हैं, देवताएं कभी जमीन में नहीं चलते हैं, वो ऊपर से दर्शन देते हैं। लेकिन यहाँ पर पृथु महाराज को दर्शन देते वक्त भगवान विष्णु जमीन पर खड़े हो गए, क्यों, क्योंकि कभी व्यक्ति ज्यादा भाव विवल हो जाता है तो उसको पता नहीं चलता क्या कर रहा है वो, देखा है, और ज्यादा किसी के प्रति प्रेम करते हैं तो बोलते हैं ना प्रेम करते हैं तो अंधे होते हैं प्रेम में, तो क्या करता है क्या सही क्या गलत व्यक्ति को पता नहीं चलता है। तो विष्णु भी इतने भाव विवल हो गए अपने भक्त को दर्शन करते, उनको पता नहीं चल रहा है वो जमीन में खड़े हैं, और बोलते कि इतने आकर्षित हो गए कि उनके आंखों में अश्रु आ गया और खड़े नहीं हो पा रहे हैं, और गरुड़ के पकड़ के खड़े हो रहे हैं, और बोलते कि पृथु तुम 99 में अपने यज्ञ को समापन करके तुम मुझे खरीद लिया, क्या चाहिए तुम्हें बोलो, सब कुछ मैं तुम्हें देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और उनके साथ किसको लेके आए थे पता है, इंद्र को भी लेके आए थे। तो भगवान विष्णु ने इंद्र को भी लेके आए थे, बोले इंद्र को बोला कि जाके माफी मांगो, तो इंद्र आके पृथु महाराज को माफी मांगता है, सब कुछ होता है, बहुत सुंदर यहाँ पर बहुत बड़ा उसका है डिस्कशन है, उसमें नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद बता रहे हैं कि पृथु महाराज कौन थे, जिस पृथु महाराज को भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन हुआ था, उस पृथु महाराज को अभी यहाँ पर चार कुमारों का दर्शन हो रहा है। तो कोई पृथु महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, फिर भी जो वैष्णव रहते हैं उनको एक उनका गुण रहता है विनयशीलता, नम्रता, वो जितने भी बड़े रहेंगे अपने को छोटे मानेंगे, कभी बड़े नहीं मानेंगे। देखा है जिस पेड़ में ज्यादा फल रहता है पेड़ क्या होता है, झुक जाता है। तो जिसमें ज्यादा ज्ञान जिसमें ज्यादा गुण स्वभाव रहता है अपने आप उस नम्रता आ जाता है। नम्रता नहीं है मतलब थोड़ा सा ज्ञान है और ऊपर ज्यादा ज्यादा बोलते हैं, वो नम्रता नहीं रहता है, वो ज्यादा ज्ञान ज्यादा बड़े भक्त नहीं रहते हैं। अल्प विद्या भयंकर बोलते हैं, एक प्रोवर्ब है, कम ज्ञान रहता है ना भयंकर रहता है, वो ज्यादा ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं। जिसमें असली ज्ञान रहता है वो ज्यादा नहीं बड़बड़ाएगा, वो चुपचाप रहता है, और जब समय आएगा तभी मुंह खोलेगा। तो यहाँ पर पृथु महाराज इतने बड़े भक्त हैं, विनयशीलता है, और बोल रहे हैं कि मेरा कितना भाग्य है कि मुझे चतुष्कुमार का दर्शन हो रहा है। देखा जाएगा तो पृथु महाराज कितने बड़े भक्त हैं, विष्णु का साक्षात दर्शन हो चुका है। तो ये एक वैष्णव का गुण रहता है। जिस प्रकार आप भागवतम में भी देखेंगे, महाभारत का जब युद्ध हो गया तो युधिष्ठिर महाराज जब महाभारत का युद्ध हो गया, सारा पृथ्वी का राजा घोषित हो गए, तो आके रो रहे हैं कि मैं बड़ा कितना बड़ा पापी हूं, मेरे वजह से कितने सारे लोगों का मृत्यु हुआ, मेरे भाइयों का मृत्यु हुआ, मैं सभी मृत्युओं का कारण हूं, मेरे कारण सब कुछ हुआ, अपने को कोस रहे हैं। तो भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं, बोले नहीं नहीं तुम कारण नहीं हो, तुम तो धर्मराज हो, वो सब अधर्मी थे इसलिए उनका मृत्यु हुआ, तुम क्यों अपने को कोस रहे हो। ने बोले नहीं 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 मैं ही सबका कारण हूं, मैं ही सबका कारण, बोल के बार बार रो रहे हैं, अपने को कोस रहे हैं, ठीक से खा नहीं रहे, ऐसे युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं। फिर उनको मनाने के लिए भगवान कृष्ण क्या करते हैं, भगवान बोले मेरा बात भी सुनेगा नहीं, इसको अगर बनाना है तो पितामह भीष्म के पास लेना पड़ेगा। और तब तक पितामह भीष्म सरसज्जा में सोए रहे थे, तब तक वो गए नहीं थे। तो फिर बोलते हैं कि आप सब पांडव चलो मेरे साथ। तो कृष्ण भगवान सभी पांडवों को लेके पितामह भीष्म के सामने खड़े करवाते हैं, और तब पितामह भीष्म खुद बोलते हैं, अरे तुम्हारा कोई गलती नहीं है, सर्वम कालम कृतम मन्ये, सभी इस काल का प्रभाव से हो रहा है, और ये जो दुर्योधन है, जो पाप का प्रतीक था, अधर्म का प्रतीक था, उसको मरना ही था, अगर वो नहीं मरता तो अधर्म सारे संसार में फैल जाता। इसलिए भगवान कृष्ण ने जितने सारे अधर्मी राजाएं थे सब अधर्म के पक्ष में गए, दुर्योधन जो था अधर्म का प्रतीक था, और जब ये महाभारत का युद्ध घोषणा हुआ तो जितने सारे अधर्मी राजा थे सब दुर्योधन के पक्ष में चले गए, और जितने सारे धार्मिक राजा थे पांडवों के पक्ष में आ गए। तो इस कुरुक्षेत्र के रणभूमि में सारे अधर्मी राजाओं का एक साथ विनाश हो गया, तो ये बहुत अच्छा हुआ, बोल के पितामह भीष्म बोलते हैं, इसलिए तुम्हारा कोई गलती नहीं है, अपने को मत कोसो। तब जाके युधिष्ठिर महाराज थोड़ा समझते हैं। तो इस प्रकार हम यहां पर देख रहे हैं, और आज थोड़ा मैं चर्चा करना चाहूंगा, आज का जो तिथि है बहुत ही पुण्य तिथि है। आज कौन सा तिथि है, आषाढ़ी एकादशी। तो एक बहुत ही पुण्य तिथि है, थोड़ा कुछ मैं एकादशी का महात्म्य के बारे में बोलूंगा और आज की तिथि के बारे में बोलूंगा, और फिर हम समापन करेंगे भागवत कथा। तो ये आषाढ़ी एकादशी जो है शास्त्र में वर्णन करते हैं, एकादशी का जो महात्म्य है, ये जो युधिष्ठिर महाराज और भगवान कृष्ण के बीच में संवाद है। तो युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं भगवान कृष्ण को, और भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं कि एकादशी का महात्म्य क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, भविष्य उत्तर पुराण में आता है कि हे भगवान कृष्ण, ये आषाढ़ के मास में जो एकादशी आता है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, इसका क्या महात्म्य है। तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं कि ये एकादशी कैसे शुरू हुआ है। तो बोलते हैं कि एक राजा थे, उनका नाम है मानधाता राजा। तो मानधाता एक राजा थे जो कि बहुत ही अपने जो प्रजा को बहुत ही धार्मिक रूप से शासन कर रहे थे, लेकिन एक बार ऐसा होता है कि उनके राज्य में बारिश होना बंद हो जाता है, और एक साल नहीं, दो साल नहीं, तीन साल तक बारिश नहीं आता है। और जब बारिश नहीं होगा तो क्या होगा, अकाल आ जाएगा, खाना नहीं मिलेगा लोगों को। तो लोगों को खाना बंद हो गया, खाना नहीं मिला तो लोग मरने लगे, पूरा अकाल आ गया। तो सब प्रजा जाके राजा को बोलते कि राजा ऐसा क्या हो गया कि हमको खाना नहीं मिल रहा है, अकाल आ गया, बारिश नहीं हो रहा है। तो राजा बोलते मैं तो पूरा धार्मिक रूप से शासन कर रहा हूं, और जब जितना मुझे पता है मैं एक भी पाप कार्य अभी तक किया नहीं हूं, तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो राजा भी बहुत आश्चर्य हो गए, और फिर राजा इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए वो सब कुछ छोड़ के जंगल में जाते हैं। जंगल में गमन करके बहुत सारा ऋषियों को पूछते हैं कि इसका क्या कारण हो सकता है। और फिर वो जाते जाते एक ऋषि के आश्रम में आते हैं, अंगिरा ऋषि के आश्रम में आते हैं, और अंगिरा ऋषि को पूछते हैं कि हे ऋषिवर, कृपा करके बताइए कि ऐसा क्या कारण है जिसके कारण मेरे राज्य में अकाल आ गया है। तो अंगिरा ऋषि अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं, बोल कि हे राजा, आप तो बहुत धार्मिक राजा हो, आपके हाथों से कुछ पाप कार्य नहीं हुआ है, लेकिन आपके राज्य में एक व्यक्ति, एक शूद्र व्यक्ति, मतलब जिसको योग्यता नहीं है, वो यज्ञ कर रहा है, हवन कर रहा है, जिसके कारण ये अकाल आ रहा है। तो इसके मतलब देखिए, अगर कोई व्यक्ति के, अभी जैसे टेररिस्ट है, टेररिस्ट वो भी बड़े बड़े आजकल के टेररिस्ट है, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, लेकिन ज्ञान को कैसे यूज कर रहे हैं, नेगेटिव तरीके से, जिसके कारण समाज का हानि हो रहा है। तो जिस व्यक्ति का, इसलिए चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञान ठीक है, लेकिन किसके हाथ में आप चाकू दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। वही चाकू जब डॉक्टर के हाथ में जाता है तो किसी का जान बचाता है, लेकिन वही चाकू जब चोर के हाथ में जाता है किसी का जान लेता है। तो चाकू का गलती नहीं है, किसके हाथ में आप दे रहे हैं वो देखना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान का गलती नहीं है, कौन इस ज्ञान का उपयोग करता है उसके ऊपर निर्भर होता है। इसलिए जो ये जो भागवत ज्ञान, ये जो ज्ञान दिया जाता है, अच्छे व्यक्ति के हाथ में दिया जाता है ताकि वो समाज का कल्याण कर पाए। तो ये जो व्यक्ति था वो बहुत ही खराब व्यक्ति था, जिसके कारण समाज का कल्याण नहीं होगा, जिसके कारण अकाल आ रहा है, बारिश बंद हो गया है। इसलिए बोलते हैं, राजा जल्दी जाओ, इस व्यक्ति को मार डालो। तो बोला, अरे इसने तो कुछ पाप कार्य नहीं किया, किसी को तो हानि नहीं पहुंचा, कैसे उसको मार सकता हूँ, ये तो बस हवन ही कर रहा है ना। तो राजा भी प्रश्न पूछे। तो फिर अंगिरा ऋषि बोलते हैं, ठीक है, और एक दूसरा उपाय बताता हूँ। इस आषाढ़ मास में एक एकादशी आता है, उसको आषाढ़ी एकादशी बोलते हैं। आप इस आषाढ़ी एकादशी करो, तुरंत ही बारिश शुरू हो जाएगा। और फिर राजा, मानदाता राजा आते हैं और इस आषाढ़ी एकादशी का व्रत करते हैं, और जैसे ही आषाढ़ी एकादशी करते हैं उनके राज्य में तुरंत बारिश, घमाघट बारिश शुरू हो जाता है, और चारों तरफ बारिश होता है, और फिर से अन्न सृष्टि होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार इस आषाढ़ी एकादशी का जो महत्व राजा युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने बताते हैं भविष्य उत्तर पुराण में। इस प्रकार इस आषाढ़ी एकादशी का शुरुआत होता है, इसलिए जब यज्ञ करते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, तब बारिश होता है, और जब बारिश होता है तो अन्न का उत्पन्न होता है। इसलिए यज्ञ कलयुग में कौन सा सबसे बड़ा यज्ञ है, नाम संकीर्तन यज्ञ। लोग बोलते हैं ना, अरे खाने का शॉर्टेज है, खाना नहीं मिलता है, लोग भूखे मरते हैं, ये करो वो करो। सही में सबको अगर आपको खाना खिलाना है और जो जो भूख है उसको अगर मिटाना है तो क्या करना चाहिए, नाम संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ये संकीर्तन यज्ञ हम एक साथ करते हैं, संकीर्तन, कीर्तन मतलब भगवान का कीर्तन करना, सब एक साथ जब करते हैं तो इसको संकीर्तन बोला जाता है। जब ये संकीर्तन करते हैं तो अपने आप बारिश होता है, सही समय पर बारिश आएगा, और जब बारिश आएगा तो अन्न उत्पन्न होगा। लोग बोलते हैं ना, आप लोग हरे कृष्णा लोग क्या करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल करो, बैठ के हरे कृष्णा माला करते रहते हैं, अच्छा खासा नौकरी कर रहे थे, कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, सब छोड़ छाड़ के धोती कुर्ता पहन के हरे कृष्णा करते रहते हो, कुछ प्रैक्टिकल करो। लोग ऐसा कभी कभी बोलते हैं, हम जब प्रचार करते हैं ना, लोग बोलते हैं, एक व्यक्ति मुझे बोला, तुम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अच्छा खासा कमाई कर रहा था, उस पैसा में किसी भूखे को खिलाते, छोड़ के इधर हरे कृष्णा कर रहे, क्या मिल रहा है उधर से, कुछ प्रैक्टिकल करो स्वामी जी बोलते हैं। तो सबसे बड़ा प्रैक्टिकल चीज यही है, बैठ के एक जगह पर हरे कृष्ण मंत्र जप करना। एक जगह पर बैठ के अगर हरे कृष्ण मंत्र आप जप करते रहेंगे तो उससे बारिश अपने आप सही समय पर आएगा। कितना बड़ा भी साइंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाएगा, लेकिन बारिश सही समय पर नहीं ला सकता, उल्टा लेट करेगा, प्रदूषण होगा, पॉल्यूशन होगा, उससे उल्टा एनवायरमेंट और लॉस होता है, और जो प्रकृति को हम नष्ट करते हैं उसके विपरीत। अगर आप एक जगह पर बैठ के हरे कृष्ण नाम संकीर्तन यज्ञ अच्छे से करेंगे तो अपने आप भगवान विष्णु संतुष्ट होंगे, और फिर इंद्र जी सही समय पर बारिश करेंगे। सोचिए, एक जगह पर आप बैठ के हरे कृष्ण कर रहे हैं और सारा विश्व का कल्याण हो रहा है, कितना बड़ा प्रैक्टिकल चीज है कि नहीं। तो ये चीज हमको समझना पड़ेगा कि कलयुग में नाम संकीर्तन, इसलिए कई कोई को बोलते हैं तो उससे आपको निराश नहीं होना चाहिए। जो हमको मिला है हरिनाम, ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल चीज है कलयुग में। अच्छे से अगर हम बैठ के एक जगह पर नाम संकीर्तन करते हैं तो सारे समाज का कल्याण होता है उससे। और उससे अगर आप और नाम संकीर्तन करके समाज में जाकर अगर प्रचार करते हैं तो, और ये तो सोने पे सुहागा है। सोचिए, लोगों को जाके प्रचार कर रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि हरिनाम लो, जप करो, भागवत पढ़ो, तो ये और बड़ा चीज है। कोई भक्त अगर थोड़ा समय निकालता है अपने बिजी स्केड्यूल से और जाके लोगों को बोलते हैं कि हरिनाम लीजिए, आप भी हरिनाम लीजिए, तो ये कितना बड़ा चीज है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल चीज है जो कि कलयुग में हम कर सकते हैं। तो इस स्थिति में जो आषाढ़ी एकादशी, इस प्रकार इसलिए इस स्थिति में बारिश ज्यादा होता है, तो क्योंकि नाम संकीर्तन यज्ञ का महत्व है इस एकादशी के साथ जुड़ा हुआ है, और इस स्थिति से करने से बारिश सही समय पर आता है, और इस समय ज्यादा बारिश भी होता है आषाढ़ मास में। और आज का तिथि में क्योंकि मैं जगन्नाथपुरी से हूँ, तो थोड़ा मुझे जगन्नाथ जी के साथ थोड़ा आसक्त है, तो थोड़ा एक बताऊंगा उनके बारे में भी। आज का तिथि में जगन्नाथ जी का बहुत सुंदर एक पर्व होता है। तो जैसे आपको रथ यात्रा पता रहेगा, तो रथ यात्रा शुरू होता है, और रथ यात्रा जो उल्टा रथ यात्रा होता है द्वादशी के दिन में हो जाता है। द्वादशी के दिन में उल्टा रथ यात्रा भगवान श्री मंदिर से, श्री मंदिर मतलब द्वारका धाम, द्वारका धाम को भगवान का श्री मंदिर माना जाता है। और जैसे भगवान कृष्ण द्वारका में वृंदावन से छोड़ के द्वारका में चले आए, द्वारका तो आ गए लेकिन अपना दिल वृंदावन में था उनका, हमेशा वृंदावन के बारे में सोचते रहते थे, कैसे गोपियां हैं, कैसे गोप हैं, हमेशा उनके बारे में सोचते रहते थे। तो द्वारका में थे लेकिन मन दिल हृदय वृंदावन के बारे में हमेशा सोचते रहते थे। तो उनको हमेशा वृंदावन जाने का इच्छा रहता था। तो एक बार एक ऐसा परिस्थिति आ जाता है कि हमें वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। तो हमेशा भगवान जब कृष्ण रात में सोचते थे तो रात में बड़बड़ाते थे। रात में आप क्या बड़बड़ाते हैं, जिसके प्रति ज्यादा आसक्ति वही नाम आएगा ना। तो कृष्ण सोते सोते राधा रानी ललिताए विशेखे विशाखा सब नाम लेते थे, तो सब रानियां बोलते अरे ये किसका नाम ले रहे हैं, 16108 पटरानियां हैं, बोल रहे कि हम लोग इतना सेवा कर रहे हैं फिर भी संतुष्ट नहीं है, ये राधा विशाखा ललिता ये किसका नाम ले रहे हैं ये सब। तो एक दिन तो भगवान कृष्ण दिन में सोए थे और दिन में भी नाम ले रहे थे, तो फिर ये ललिता विशाखा राधा रानी का नाम सुनते तो रुक्मणी जी थोड़ा गुस्से हो जाते हैं, बोले क्यों ये सबका नाम ले रहे हैं, कौन है ये सब। तो फिर वहां पर हमारे नारायण नारायण बराबर समय में पहुंच जाते हैं वो, तो बोल के अरे बोले कि गुस्सा मत हो, ये पटरानियां ये सब उनके बहुत प्रिय गोपियां हैं, और आप लोग को पता नहीं ये गोपियां उनको कितने प्रिय है। आप लोग तो बड़े बड़े रानियां हैं लेकिन ये गोपियां हमेशा उनके हृदय में रहते हैं, और वृंदावन में उन्होंने बहुत सारा सुंदर सुंदर लीलाएं किया है, आपको पता नहीं है। तो ऐसा है क्या, बोला हाँ, लेकिन ये उठ नहीं रहे, हमेशा भगवान का नाम लेते जा रहे हैं। बोले अभी क्या करेंगे, अभी राधा रानी के भाव में चले गए अभी, तो क्या करना पड़ेगा। तो बोले ठीक है नारद मुनि आप आ गए तो थोड़ा उनको भजन गाइए, तो आपका भजन सुनेगा। नारद मुनि बजाए बीणा राधिका रमण, राधा रानी का भजन करते रहते हैं, थोड़ा राधा रानी का भजन गाइए तो उठ जाएंगे। तो नारद मुनि बोलते उठ तो जाएंगे लेकिन इधर रहने वाले नहीं, उठ के सीधा दौड़ेंगे वृंदावन। बोले ऐसा है क्या, बोला हाँ। तो फिर तो बड़ा टेंशन का बात है, फिर भाग चले जाएंगे तो फिर इधर द्वारका में कौन रहेगा। तो वो जाने तो वाले हैं तो अभी आप सोच लो। तो फिर बोले ठीक है उठाना तो पड़ेगा, आप भजन गाइए। तो बोले कि मैं भजन गाऊंगा लेकिन उठ के ही दौड़ के जाएंगे। लेकिन नारद मुनि बोलते आपको पता है वृंदावन का क्या स्थिति है। बोले क्या है, भगवान वृंदावन से आए द्वारका और बोल के गए कि मैं एक दिन में आ जाऊंगा, लेकिन एक दिन से गए, एक दिन के बाद, एक दिन क्या 100 साल हो गए अभी तक गए नहीं वृंदावन, और बेचारे गोपियां वो जस्ट एक दिन में आऊंगा सोचते सोचते अभी तक अपना प्राणवायु को रखें कि भगवान आएंगे एक दिन। राधा रानी ललिता कुछ बिना खाए पिए सब एक मृत शरीर के तरह है। तो बहुत ही जो परिस्थिति है बहुत गंभीर है वृंदावन में। माता यशोदा निरंतर अश्रु बहा रही है, बोलते हैं कि वृंदावन में आप अगर जाएंगे दो नदियां बहती है, उस नदियों को लेके लेके जाएंगे तो नंद भवन को जाता है, और माता यशोदा का दोनों आंखों से अश्रु बहती रहती है, वो दो नदी के तोरा तरह व्रज में बहती है। तो ये परिस्थिति है व्रज का। तो अगर भगवान कृष्ण इस परिस्थिति में जाएंगे सोचो उनको कितना कष्ट लगेगा। तो बोला हाँ सही बात है, तो क्या करेंगे। तो बोले कि मैं उनको उठाने से पहले कोई आप जाओ और ब्रज में बोलो कि कृष्ण आ रहे हैं, और जैसे सुनेंगे कृष्ण आ रहे हैं सब लोग हर्ष उल्लास होके उनको स्वागत करने के लिए पूरा वृंदावन को सजा देंगे फिर से। तो बोले हाँ ये अच्छा उपाय है। तो बोले कौन जाएगा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन जाएगा। तो सबका नजर जाता है उद्धव जी के तरफ। उद्धव भगवान का अच्छा मंत्री है, आप जाओ। तो बोले उद्धव बोले नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा, एक बार गया था मैं एक बार भगवान जी का चिट्ठी लेके गया था, मैंने देखा वृंदावन कैसा है और सब गोपियों को नंद बाबा यशोदा सबको मैंने बोला कि कृष्ण आने ही वाले हैं, मैं उनको भेजता हूँ, लेकिन ये भगवान गए नहीं, अभी दूसरे बार जाऊंगा तो पिटाई होगा मेरा मैं नहीं जाने वाला हूँ, उद्धव मना कर देते हैं। तो फिर सोचते कौन जाएगा, फिर सबका नजर किधर जाता है, बलदेव जी के तरफ जाते हैं। तो बड़े भाई हैं आप जाइए। तो बलदेव बोला अरे मैं भी गया था, मैं तो 2 महीना रह के आया हूँ ब्रज में, और सब गोपियों को नंद बाबा यशोदा सबको मैंने भी बोला कि अरे मैं तो बड़ा भाई हूँ, कान्हा मेरा छोटा भाई है, कृष्ण को मैं ऐसे ही बोलूंगा कान पकड़ के जाऊँ वृंदावन तो चला जाएगा कृष्ण, लेकिन ये कृष्ण मेरा सुनते ही नहीं, मैं कितना बार कान्हा को बोला जाओ जाओ जाओ, ये कान्हा जाता ही नहीं। तो बोले कि अभी जाऊंगा तो यशोदा माता मेरा कान पकड़ेगी, तो मुझे भी हिम्मत नहीं हो रहा है जाने का वृंदावन। तो सब लोग सोचे फिर जाएगा कौन, फिर तब कौन आती है, सुभद्रा आती है। सुभद्रा कौन है, कृष्ण का बहन है। सुभद्रा बोला चलो तुम लोग से कुछ होने वाला नहीं है, मैं जाती हूँ और सब गोपियों को और माता यशोदा को समझा दूंगी, और माता यशोदा का गोदी में बैठ के उनको माँ को मैं अच्छे से समझा दूंगी कृष्ण आने वाला है, और सब लोग मेरा बात सुनेंगे, कोई एक नारी दूसरे नारी का कष्ट को समझ सकती है, और मैं अपने भाषा से सबको अच्छे से समझा दूंगी। तो ये सुभद्रा निकलती है, चलो मेरा रथ रेडी करो। और सुभद्रा का रथ रेडी करते हैं निकलने के लिए वृंदावन, और उसी समय बलदेव जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, अरे छोटी बहन अकेली जाएगी, बहन अकेले जाती है तो भाई को अच्छा नहीं लगता ना, भाई बोलता है मैं प्रोटेक्शन देने के लिए निकलता हूँ तुम्हें। तो बलदेव जी बोलते मेरा रथ में निकालो, और मेरा रथ आगे आगे निकलेगा, सुभद्रा मेरे पीछे पीछे निकलेगी। तो बलदेव जी सिक्योरिटी गार्ड होकर निकलते हैं सुभद्रा जी का। तो इसलिए जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में अगर जाएंगे तो 3 रथ रहता है, पहला रथ निकलता है दाऊ जी का, बलदेव जी का रथ निकलता है, और सुबह सुबह बलदेव जी का रथ पूरा जल्दी निकल जाता है, और बलदेव जी का रथ जैसे ही निकलता है सुभद्रा जी का रथ उसके पीछे पीछे निकलता है, दोनों रथ एक साथ ही निकल जाता है सुबह सुबह, जगन्नाथ जी का रथ नहीं निकलता है, और दोनों का रथ निकल के दोनों निकल जाते हैं वृंदावन खबर देने के लिए। और तब नारद मुनि बोलते हैं रेडी सब लोग, बोले हाँ रेडी, कृष्ण को उठाऊँ अभी, बोले हाँ उठाइए। और फिर नारद मुनि अपना वीणा बजाना शुरू करते हैं, राधिका रमण नाम है, और राधा रानी का नाम गाना जैसे ही शुरू करते हैं कृष्ण का आँख खुलता है, अरे जैसे ही राधा रानी का नाम सुनते हैं कृष्ण आँख खुलता है, और राधे 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 चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और बोलते हैं कि राधा रानी किधर है, राधे राधे, और देखते हैं नारद मुनि को देखते हैं वीणा बजा रहे, बोले नारद तुम क्या कर रहे हो वृंदावन में, बोलते वो नारद मुनि को देख, बोले रुक्मणी सत्यभामा आप लोग वृंदावन में क्या कर रहे हैं, बोले कि हे भगवान आप वृंदावन में नहीं हैं, आप द्वारका में हैं। बोले द्वारका, द्वारका में हूँ, क्योंकि कृष्ण पूरा वृंदावन में चले गए, उनका मन वृंदावन में है। तो बोले मैं द्वारका में हूँ, मुझे वृंदावन जाना है, तो तुरंत दौड़ना शुरू करते हैं, और भगवान भगवान राधा रानी के इतने प्रेम में भाव विवल थे कि दौड़ भी नहीं पा रहे। देखा है कभी कोई व्यक्ति नशा में रहेगा पूरा बेवड़ा कैसे दौड़ता है, इधर गिर जाता है उधर गिर जाता है, दौड़ नहीं पाता है क्योंकि नशा में। तो भगवान भी राधा रानी के प्रेम के नशे में हैं, तो दौड़ नहीं पाते हैं, इधर गिर रहे हैं उधर गिर रहे हैं, तो फिर उनको उठाना पड़ता है, फिर सब लोग उनको पकड़ते हैं, कृष्ण को एक साथ पकड़ते हैं और धीरे धीरे लेकर रथ में बिठाते हैं। तो इसको बोलते हैं पहंडी विजय। तो आप देखेंगे जगन्नाथ जी को जब भगवान को श्री मंदिर से निकालते हैं सब पांडा लोग पकड़ के आगे पीछे पीछे आगे ऐसा ऐसा नचा के लेके आते हैं। तो भगवान पूरा जैसे पूरा नशे में है, पूरा राधा रानी के नशे में है, पूरा आगे पीछे होते 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 आते हैं, उसको बोलते हैं पहंडी विजय। और जब रथ मंदिर से बाहर जब आते हैं तो भगवान जगन्नाथ जी का इतना बड़ा मुकुट रहता है, देखेंगे तो भगवान जितना हाइट है मुकुट उतना ही हाइट रहता है, बहुत बड़ा मुकुट पहनाते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं आप देखेंगे पांडा लोग सब मुकुट को तोड़ तोड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि उनको वृंदावन लेना है अभी, तो अभी द्वारकाधीश नहीं चाहिए, अभी वृंदावन में उनको फूल से सजा के लेके जाएंगे, सोने का मुकुट पहन के वृंदावन में जाएंगे तो रसावास हो जाएगा। तो सब मुकुट को पूरा इतना सुंदर सजाए रहते हैं लक्ष्मी जी, क्योंकि द्वारका में रुक्मणी जी है ना, रुक्मणी जी इतना सुंदर मुकुट सजा के उनको भेजते हैं, लेकिन बाहर आते ही सब पांडव लोग तोड़ के फेंक देते हैं मुकुट पूरा, सब पूरा सिर को पूरा नंगा कर देते हैं, और फिर तुलसी का माला फूल और सब ऊपर डालते हैं, और फिर जगन्नाथ जी को धीरे धीरे पहंडी करके उनको रथ में बिठाते हैं, और रथ पहले से दारुक जी रथ में बैठे रहते हैं, और जैसे ही रथ में बैठते हैं नारद मुनि बोलते हैं दारुक जी रथ चालू करो लेके जाओ वृंदावन, और सब इसलिए इतने सारे भक्त एक दिन में एग्जिट हो जाते हैं और सब भगवान जगन्नाथ जी को खींच के लेके जाते हैं, क्योंकि भगवान खुद नहीं जा पा रहे हैं। जो सारे संसार के मालिक हैं, जो सारे संसार के भगवान हैं, और खुद चल के नहीं जा पा रहे वृंदावन, इतने राधा रानी के प्रेम में विवल हैं, तो जो भी भक्त आते हैं उनको खींच के लेके जाते हैं, भगवान भर भर के उनका कृपा देते हैं। इसलिए एक दिन में जगन्नाथपुरी के इस ग्रैंड रोड में 10 से 15 लाख लोग पहुंच जाते हैं जगन्नाथ जी को रथ खींचने के लिए, और भगवान का आंख बड़ा बड़ा होकर रहता है सबको, कौन देख रहे हैं, कौन कौन आया मेरा रथ खींचने के लिए, जो भी आया रहता है उसको भर भर के प्रेम देते हैं और कृपा मिलता है। तो ये क्या बोलते हैं, ओ मिलता है ना डबल बोनांजा बफर मिलता है, दिवाली का बफर, तो ये रथ यात्रा का ऐसा बफर है। तो उस दिन में जो भी आता है भगवान का रथ खींचता है, भगवान का बहुत कृपा उसको मिलता है, क्योंकि भगवान जो संसार के मालिक है वो खुद नहीं जा पा रहे हैं, और जो उनको वृंदावन जाने के लिए उनको मदद करते हैं भगवान उनको आभारी रहते हैं, और भगवान बोलते हैं आपका बहुत कृपा है, मुझे आप वृंदावन लेके जा रहे हो, मैं खुद चल के नहीं जा पा रहा हूँ और रथ में मुझे बिठा के लेके जा रहे हो, तो भगवान का बहुत कृपा मिलता है। इसलिए इतने 15-20 लाख लोग आते हैं खींच के उनको गुंडीचा मंदिर लेके जाते हैं। गुंडीचा मंदिर क्या है, वृंदावन धाम है। जो श्री मंदिर है वो द्वारका धाम है, और जो ग्रैंड रोड है उसको कुरुक्षेत्र बोला जाता है, उसी कुरुक्षेत्र की भूमि से खींच के लेके जाते हैं, और जो गुंडीचा मंदिर है वो वृंदावन धाम है। और जैसे ही भगवान वृंदावन में पहुंचते हैं, तो भगवान वृंदावन में पहुंचने से पहले वहां पर बलदेव जी और सुभद्रा महारानी को भेज दिए थे, लेकिन दोनों तो पहुंच जाते हैं पहले, लेकिन जैसे ही पहुंचते हैं बलदेव जी सुभद्रा जी देखते हैं कौन सा दृश्य देखते हैं, पहले ही देखते हैं कि सारे व्रज में सब भगवान के शोकाग्रत होकर सब रो रहे हैं, राधा रानी ललिता सखी के गोदी में अपना सिर रख के अपना प्राणवायु में पूरा अंतिम सांस ले रही है। ऐसा परिस्थिति को देखते हैं तो ये देख के बलदेव जी सुभद्रा जी को भी सहन नहीं होता है, और उनको भी अष्ट सात्व के विकार आ जाते हैं, स्टंड होकर एक जगह पर खड़े हो जाते हैं, और खबर क्या बताएंगे, एक जगह पर लकड़ी के तरह खड़े हो जाते हैं, और उनके आंखों भी बड़े बड़े आंख हो जाते हैं ये सब दृश्य देख के। और तब जब जगन्नाथ जी कृष्ण जब आते हैं तो परिस्थिति वैसा ही गंभीर है, कोई किसी को खबर दिया नहीं है, और कृष्ण भी आके राधा रानी का दर्शन करते हैं, राधा रानी ललिता सखी के गोदी में अपना सिर रख के पूरा सोई है, और सब लोग उनके कान में कृष्ण 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 बोल रहे हैं, तो उनका जो प्राणवायु चल रहा है कृष्ण का नाम से चल रहा है। उस परिस्थिति में जब कृष्ण राधा रानी का दर्शन करते हैं इतने सालों के बाद, तो कृष्ण का आंख भी बड़ा बड़ा हो जाता है। देखिए कुछ चीज़ अगर आप आश्चर्य हो जाते हैं तो आंख बड़ा हो जाता है, बारिश के टाइम में बहुत सारा सांप निकलते हैं, रात में अगर सांप देख लेंगे तो आंख कैसा होता है, बड़ा हो जाता है ना, तो कुछ भी चीज अगर आपको आश्चर्य करता है तो आंख बड़ा हो जाता है, तो उसी तरह कृष्ण का आंख राधा रानी को देख के बहुत बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा होता है 360 डिग्री गोल हो जाता है। देखिए बलदेव जी सुभद्रा जी का थोड़ा इतना गोल नहीं है, लेकिन कृष्ण का पूरा गोल है 360 डिग्री। तो सबसे ज्यादा आश्चर्य उनको होता है राधा रानी को इस रूप में देख के, और शरीर कैसा हो जाता है, लकड़ी के भांति हो जाता है, स्तंभ हो जाते हैं। देखिए कोई किसी का कोई अगर बहुत करीबी व्यक्ति अगर गुजर जाता है तो पूरा वो स्टंड हो जाते हैं, एक जगह पर स्थिर हो जाता है, कुछ हिलते भी नहीं, तब हम छापड़ पापड़ मारते हैं उनको, मारते हैं क्यों, क्योंकि एक्शनल कॉन्शियस में आना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति का मृत्यु भी हो सकता है। तो वैसे कृष्ण का शरीर पूरा स्टंड हो गया, लकड़ी के भांति हो गया, और हाथ पैर सब सिकुड़ जाता है, और राधा रानी का उस प्रेम में भगवान कृष्ण डूब के वहां पर गिर जाते हैं। जिस प्रकार एक कछुआ एक पानी में तैरता है, उस प्रकार कृष्ण इस अवतार में राधा रानी के प्रेम में एक कछुए के तरह तैरते हैं और गिर जाते हैं नीचे, इसलिए और लकड़ी के भांति हो जाते हैं। इसलिए भगवान जगन्नाथ जी का जो विग्रह बनता है वो लकड़ी से बनता है, और उस लकड़ी का जो पहला विग्रह बनता है समंदर में तैर के आता है 3 लकड़ी, और फिर उस लकड़ी से उस विग्रह को बनाते हैं। और उस समय जब एक हवा का झोंका कृष्ण का शरीर को स्पर्श करके राधा रानी का शरीर को स्पर्श करता है, तब राधा रानी का आंख खुलता है, और राधा रानी जाके जब कृष्ण को स्पर्श करते हैं तब कृष्ण बाहरी चेतना में आते हैं, और तब जाके कृष्ण और राधा रानी का संगम होता है। और ये है रथ यात्रा का रहस्य। ये रथ यात्रा का रहस्य तो हो जाता है, भगवान जाते हैं जगन्नाथ जी इस रूप में वृंदावन में गुंडीचा में 10 दिन रहते हैं और राधा रानी का संग करते हैं, और फिर द्वादश के दिन बाहुड़ा रथ यात्रा होता है, और यहाँ पर रुक्मणी जी लक्ष्मी जी बहुत गुस्से में कि गए गए 10 दिन हो गए अभी तक आए नहीं, तो फिर 10वां दिन को भगवान रथ यात्रा में लौट के आते हैं श्री मंदिर द्वारका आ जाते हैं। लेकिन भगवान को अंदर जाने से पहले बाहर 2 दिन रहते हैं। आज का जो दिन है एकादशी दिन है आषाढ़ी एकादशी को, भगवान अभी द्वारका में आ गए। तो द्वारका में कृष्ण कौन है? द्वारिकाधीश है, राजा है। तो आज के दिन को भगवान का सोना वेश होता है, तो भगवान को सोने से अलंकृत किया जाता है। अब जाके देखेंगे ऐसा कोई विग्रह को इतना सोना मेरे ख्याल से कहां भी नहीं सजाते होंगे। अब देखेंगे जगन्नाथ जी को पूरा मुकुट सोने का मुकुट रहता है, 400 तोले का सोने का मुकुट रहता है, और एक एक 200-300 तोला का हाथ सोने का लगाते हैं, पैर सोने का लगाते हैं। अब इतना बड़ा विग्रह को सोने का ऐसे सजाएंगे तो उसे कैसा देखें, अब दर्शन कर सकते हैं। तो पूरा आज का आप देखेंगे तो लाइव आता रहता है, यूट्यूब में देख सकते हैं, पूरा जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा को सोने के पूरा श्रृंगार करते हैं, और उनका जो सोने का खजाना रहता है आज के दिन निकालते हैं सब सोना। तब सोना निकाल के जगन्नाथ जी को पूरा द्वारकाधीश है ना, द्वारका के राजा कृष्ण फिर से आ गए, तो लक्ष्मी जी सबके कृपा से पूरा सोने से उनको अलंकृत करते हैं, और इसको बोलते हैं सुनावेश। तो आज के आषाढ़ी एकादशी में इस सुनावेश होता है, और जगन्नाथ जी को बोलते हैं कि रथ यात्रा के बाद आज का दिन में सबसे ज्यादा भक्त फिर से आते हैं दर्शन करने के लिए, कि भगवान का फिर से सुनावेश होगा, सब लोग दर्शन करते हैं। फिर आज का दिन उनका दर्शन होता है सुनावेश, फिर आज का सुनावेश होने के बाद कल के दिन भगवान का और एक त्यौहार होता है, उसको बोलते हैं अधरपणा। मतलब भगवान रथ में जाते हैं तो रथ में बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं ना, देवी देवताएं, बहुत सारे लोग भगवान के साथ आ जाते हैं उनका संग लेने के लिए। तो भगवान का सब भोग खिलाते रहते हैं तो बाकी लोग को इतना मिलता नहीं। तो कल के त्यौहार ऐसा होता है कि भगवान को बहुत सारा पाणा, मतलब जो शरबत बनाते हैं, तो बड़े बड़े मटके में शरबत बनाते हैं, अधरपणा, मतलब अधर मतलब ऊंट, और इस मटके जो रहता है बड़ा बड़ा 7-8 फुट का मटका रहता है, उसका जो ऊपर का हिस्सा रहता है भगवान को ऊंट को स्पर्श करता है, इसलिए नाम है अधरपणा। और भगवान को भोग देते हैं पाणा, और फिर उसके बाद सब मटका को एक साथ तोड़ देते हैं। क्यों? जितने सारे देवी देवता जो भी रहते हैं उनको ये प्रसाद मिलता है, और सबको खिला देते हैं, सब लोग संतुष्ट होकर अपने अपने धाम में चले जाते हैं, और फिर भगवान को अगले दिन नीलाद्रि विजय मतलब श्री मंदिर में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार जगन्नाथ पुरी का रथ यात्रा जो है आज का दिन आषाढ़ी एकादशी में सुनावेश होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पर्व है जो कि रथ यात्रा के बाद होता है। और आप लोग महाराष्ट्र में तो आप लोग को पता रहेगा आषाढ़ी एकादशी में क्या होता है, कितना सुंदर दिंडी निकलता है, दिंडी निकलता है, और आज के दिन आषाढ़ी एकादशी के दिन वो दिंडी पहुंचता है पंढरपुर में, है संत तुकाराम महाराज का जो पादुका लेके दिंडी में निकलते हैं, देहू से निकलते हैं, फिर देहू से होके आलंदी में जाते हैं, आलंदी में ज्ञानेश्वर महाराज का उनका भी पादुका लेते हैं, है फिर उधर से पंडर, पहले एक साथ ही होता था, बाद में कुछ सालों के बाद 2 पालकी हो गया, तो देहू से डायरेक्ट 1 पालकी जाता है पंडरपुर, और दूसरा पालकी निकलता है आलंदी से ज्ञानेश्वर महाराज का, उनका पादुका लेके पंडरपुर जाते हैं। तो मेन आषाढ़ी एकादशी में क्या होता है, आज के दिन ये दिंडी समावेश होता है पंडरपुर धाम में, सब लोग आज के दिन पंडरपुर धाम में पहुंच जाते हैं, और चंद्रभागा नदी में स्नान करते हैं, और फिर पंडरीनाथ जी का दर्शन करते हैं आषाढ़ी एकादशी में। और बोला जाता है कि ये जो विट्ठल जी है ये भी कृष्ण है, द्वारका से यहाँ पर आए हैं पंडरपुर में, ये भी द्वारका कृष्ण है। लेकिन बोला जाता है कि आषाढ़ी एकादशी के दिन जो विट्ठल जी है वो द्वारका कृष्ण नहीं रहते हैं, वो वृंदावन कृष्ण रहते हैं। तो आज के दिन एक दिन जो विट्ठल जी है वृंदावन भाव में रहते हैं, वृंदावन के कृष्ण रहते हैं, और इसलिए आप देखेंगे तो आज के दिन सारे वैष्णव, सारे पृथ्वी से, भारत महाराष्ट्र से सब लोग, लाखों लाख वो भक्त आते हैं उनको दर्शन करने के लिए। तो देखेंगे तो जगन्नाथ जी और विट्ठल जी के में एक समानता देखने को मिल रहा है। तो एकादशी आषाढ़ी में जगन्नाथ जी भी जाते हैं वृंदावन जाते हैं, जगन्नाथ जी तो के द्वारकाधीश हैं लेकिन वृंदावन भाव में आ जाते हैं रथ यात्रा में, और विट्ठल जी भी आषाढ़ी एकादशी में देखेंगे तो वृंदावन भाव में आ जाते हैं। तो आज के दिन बहुत ही पुण्य तिथि है, और आज के तिथि से शुरू होता है चतुर्मास का व्रत, चतुर्मास का व्रत, क्योंकि आज के आषाढ़ी एकादशी को और एक नाम बोला जाता है शयना एकादशी, देव शयना एकादशी भी बोला जाता है, क्योंकि आज के तिथि में भगवान विष्णु सोते हैं, गर्भदक विष्णु है ना, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी सृष्टि हुए हैं। तो हम जैसे रात को सोते हैं तो भगवान भी सोएंगे, तो आज के दिन भगवान विष्णु सोते हैं। और कितने दिन सोएंगे वो? 4 महीने सोते हैं। आज के दिन से सोएंगे और जाके कार्तिक महीने का एकादशी को, शुक्ल पक्ष का जो एकादशी आएगा, उस एकादशी को उठते हैं। इसलिए उसको उत्थान एकादशी बोलते हैं। आज को शयन एकादशी बोलते हैं। आज के एकादशी में सोते हैं, फिर 4 एकादशी जाने के बाद, शुक्ल पक्ष के 4 एकादशी जाने के बाद, जो कार्तिक महीने का जो एकादशी आता है, उत्थान एकादशी, उत्थान मतलब उठना, तो भगवान उस एकादशी को उठते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान सो गए मतलब संसार में क्या हो रहा है उनको पता नहीं चल रहा है। तो उनका जो नींद है उनको योग निद्रा बोलते हैं। हमारा जैसा नींद नहीं है। हमारा नींद जब आता है हम तमोगुण में चले जाते हैं, क्या होता है बाजू में पता नहीं चलता है, सो जाते हैं तो सो जाते हैं, खराटे मार के सो जाते हैं। तो भगवान का नींद ऐसा नहीं है, वो सो के भी सृष्टि को चलाते रहते हैं। सो के भी अपने योग निद्रा में सृष्टि में कैसा क्या हो रहा है सब कुछ उनका चलते रहता है। ऑटोमेटेड सिस्टम है उनका, सब कुछ चलते रहता है। वो है योग निद्रा भगवान का। तो आज की तिथि में भगवान सोते हैं और फिर 4 महीने के बाद उठते हैं। तो इसी 4 महीने को हम चतुर्मास भी बोलते हैं। और इसी 4 महीने को हमको भगवान का ज्यादा से ज्यादा भक्ति करना चाहिए शास्त्र के अनुसार। इसलिए 4 महीने में बहुत सारा संत आप देखेंगे, बहुत सारा अपने भक्तिमय जो भी श्रवणम कीर्तनम उसको ज्यादा कर देते हैं। बहुत सारे लोग मांसाहार करना छोड़ देते हैं जो मांस खाते हैं। और बहुत सारे लोग जैसे कि कोई कोई वैष्णव रहते हैं मीठा खाना छोड़ देते हैं। अलग अलग प्रकार के अपना अपना तपस्या करते हैं। कोई दिन में एक बार खाते हैं, तो अलग अलग आप शास्त्र में लिखा गया। कोई नीचे सोते हैं, पलंग में नहीं सोते हैं। कोई कोई एक हाथ में जितना मिलेगा उतना खाते हैं दिन में एक बार। कोई हाथ पीछे रखते हैं और जमीन में डाल के मुंह से जितना खा सके उतना खाते हैं। ऐसा अलग अलग प्रकार का तपस्या है। तो उसका एक उसका सार ये है कि ज्यादा से ज्यादा आपको कृष्ण चेतना में रहना है। गौड़ीय मठ में देखेंगे तो ये चतुर्मास में अपना दाढ़ी मूछ नहीं काटते हैं जो ब्रह्मचारी रहते हैं। तो हम लोग इस्कॉन में काटते हैं क्योंकि हमको प्रचार करना होता है। तो आप ऐसा दाढ़ी मूछ रखेंगे तो लोग डर जाएंगे, अरे कौन आ गए हिमालय से बाबा। तो हमको प्रचार करना रहता है इसलिए हमको दाढ़ी से मूछ काटना पड़ता है। तो इस प्रकार ये सार हमको समझना पड़ेगा कि चतुर्मास में हमको ज्यादा से ज्यादा भगवान का श्रवणम, ये सब तपस्या करने का एक ही ध्येय, उपवास। उपवास मतलब क्या है? उप मतलब नजदीक, वास मतलब नजदीक, आपको निवास करना है। किसके नजदीक? टीवी के नजदीक नहीं। मैं कंपनी में जब जॉब कर रहा था, एक मेरा फ्रेंड था, वो बोल रहा था कि हाँ मैं भी उपवास करता हूँ ना, साबूदाना वड़ा खाता हूँ और चाय पीता हूँ, बस इतना ही करता हूँ उपवास में, और बॉलीवुड म्यूजिक सुनता हूँ। तो उपवास मतलब हम कम खाते हैं और अन्न नहीं खाते हैं ताकि हम हल्का रहें और ज़्यादा समय हम भगवान के निकट में निवास कर पाए और श्रवण कीर्तन ज़्यादा कर पाए, ज़्यादा भागवत गीता चैंटिंग, ज़्यादा हम भगवान का नाम ले सके, इसको उपवास बोलते हैं। ठीक है ना? तो चतुर्मास में ये 4 महीने में हम सरल जीवन यापन करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान का भक्ति कर पाए। तो इसलिए हमको प्रभुपाद ने दिया है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। अगर आप 4 माला करते हैं, 8 माला करते हैं, 16 माला करते हैं, प्रयास कीजिए इस चतुर्मास में आप थोड़ा अपने माला को बढ़ाने के लिए, और जीवन को सरल रखिए, और जैसे ज़्यादा इंद्रिय भोग चीज़ के ऊपर ज़्यादा मत जाइए ताकि आपको ज़्यादा समय मिल सके और ज़्यादा आप भगवान का नाम गुणगान कर सकते हैं। ये रहता है हमारा चतुर्मास में, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर हमको नज़र रखना पड़ेगा। हरे कृष्णा। किनका कुछ प्रश्न रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, या किसी का कुछ टिप्पणी रहेगा तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज का भागवत कथा यहाँ पर हम समापन करेंगे। ग्रंथरा श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।